الحمد لله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 3 سے، اور جو ابھی آیات تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے پچھلے ہفتے، کیونکہ اب جو ہے وہ ہفتے میں صرف ایک دن پیر کے دن ہی درس قرآن ہوتا ہے. ترجمہ پڑھتے پڑھتے ہم اس والی آیت، بلکہ اس آیت کے اس حصے هل يستوي الأعمى والبصير کی کافی ساری تفصیل میں گئے تھے کہ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. اندھا اور بینا، ان دونوں سے یہاں پر مراد کوئی جسمانی اندھا اور جسمانی بینا یعنی آنکھ والا نہیں ہے، بلکہ روحانی اندھا اور روحانی طور پر بینا ہے. تو روحانی اندھا اور روحانی بینا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ روحانی اندھا جو ہوتا ہے وہ کفر والا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اور روحانی بینا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرق ہوتا ہے ایمان والے میں اور کافر میں، فرق ہوتا ہے. یہ دونوں ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. تو اب ایک جیسے کیسے نہیں ہو سکتے؟ اس کا مطلب جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان والے کے چہرے کے اوپر داڑھی ہوتی ہے اور کافر کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہوگی، رائٹ؟ ایمان والا جو ہے وہ کسی قسم کی ٹوپی پہنا ہوا ہوگا اور کافر جو ہے وہ ٹوپی نہیں پہنا ہوا ہوگا، نہیں، رائٹ؟ داڑھی جو ہے وہ کافر بھی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹوپی کسی قسم کی وہ کافر بھی پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری ظاہری طور پر سملیرٹیز جو ہیں وہ ایمان والے اور کافر میں ہو سکتی ہیں. جسمانی طور پر، ظاہری طور پر دونوں ہی انسان ہوتے ہیں نا. تو فرق جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کی سوچ، ایمان والے کی سوچ، ایمان والے کا عقیدہ، رائٹ، یہ اور کافر کی سوچ اور کافر کا عقیدہ جو ہے یہ بالکل مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو هل يستوي الذين یا هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون، پھر یہ ساری باتیں کری تھیں، اور اس میں پھر یہ بھی صحابہ کرام کی والی کیفیت بھی بیان کری تھی کہ ان کا جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے وہ ایمان کے بارے میں بالکل مختلف ہوتا ہے اور کفر کے بارے میں بالکل مختلف ہوتا ہے. کہ ایمان کے بارے میں ان کی سوچ محبت والی سوچ ہوتی ہے، مزین کی ہوئی چیز، ایمان ان کے لیے مزین کی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور کفر جو ہے وہ ان کے لیے قابل نفرت ہوتا ہے. کفر ایمان والے کے لیے قابل نفرت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایمان سے بھی محبت کر رہے ہیں اور کفر کے ساتھ بھی جو ہے محبت کر رہے ہیں، رائٹ، یا ایمان سے یعنی کفر سے بھی نفرت کر رہے ہیں اور ایمان سے بھی نفرت کر رہے ہیں، ہرگز ہرگز نہیں. ان دونوں کے لیے بالکل مختلف رویے، بالکل مختلف مزاج ان دونوں کے اندر ہوتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور آپ ڈرا دیجئے اس سے ان لوگوں کو، الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو جو کہ ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے اکٹھا کیے جانے سے. يُحْشَرُوا اکٹھا کیے جانا، جمع کیے جانا، إِلَى رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، جو کہ ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جانے سے، ان کو آپ ڈرا دیجئے. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. اس طرح سے وہ اکٹھے کیے جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کے سوا. یہ کیوں آپ ڈرا دیجئے؟ اس کی وجہ بھی بیان کر دی، لعلہم یتقون، کہ شاید کہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں. تو اس کے خلاصے تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ان معاند لوگوں سے، ان دشمن لوگوں سے کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے تمام خزانے ہیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ جو کچھ مجھ سے مانگا جائے وہ میں اپنی قدرت سے دے دوں، اور نہ میں تمام غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، انی ملک، لا اقول لکم انی ملک، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو بس ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، میں تو بس اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، جس میں مقتضائے وحی پر خود عمل کرنا بھی داخل ہے اور دوسروں کو دعوت دینا بھی داخل ہے. ٹھیک ہے، وحی پر عمل کرنا یہ بہت ہی چھوٹا سا جملہ، وحی پر عمل کرنا، وحی کی اتباع کرنا. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ ہر چیز کی کوئی تفصیل بھی تو ہوتی ہے نا بھائی. تو اس کی تفصیل کیا ہے کہ بھائی وحی میں جس جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کے اوپر میں عمل کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب وہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے وہ قرآن عظیم الشان کے اندر موجود ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ دونوں وحی ہیں. قرآن جو ہے یہ بھی وحی ہے اور حدیث مبارکہ یہ بھی وحی ہے. ٹھیک ہے نا، فرق صرف ان دونوں میں تلاوت کا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث مبارکہ کی تلاوت نہیں کی جاتی، ورنہ وحی تو یہ دونوں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم بھی، ہمارے اوپر بھی کیا فرض ہے کہ ہم بھی اتباع کریں وحی کی. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی. تو اس میں پھر خود عمل کرنا بھی حدیث میں موجود ہے کہ بھئی تم خود عمل کرو، تم خود عمل کرو، اور جو ہے وہ دوسروں کو دعوت دینا یہ بھی وحی کے، یعنی قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہی حضرت نے یہاں پہ تفسیراً لکھ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اندھا اور بینا کبھی کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ اور جب یہ بات سب کو مسلم ہے، یعنی بالکل صاف ستھری سیدھی سادی سی بات ہے کہ مسلم بات ہے، پکی بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو کیا تم آنکھوں والا بننا نہیں چاہتے؟ کیا تم اندھے بنے ہوئے ساری زندگی گزار دینا چاہتے ہو؟ اور اس تقریر مذکور میں غور یعنی کامل بقصد طلب حق نہیں کرتے؟ کیا تم اس میں غور نہیں کرتے؟ غور کا مطلب کیا ہے کہ بھئی بقصد طلب حق، یعنی حق کی طلب کی نیت کے ساتھ غور نہیں کرتے، حق کی طلب کی نیت کے ساتھ غور نہیں کرتے کیا تم؟ ٹھیک ہے، افلا تتفکرون، یعنی غور کرنا بھی جو ہے نا وہ بس ایسے ہی نہیں کہ تاکہ میں کسی سے اس بارے میں ڈسکشن کر سکوں، کیونکہ آپ کسی معاملے میں غور کر سکتے ہیں نا اس نیت سے کہ میں اس کے اوپر اچھا سا بیان کر سکوں، ہے نا، غور کر رہی ہیں کسی بات کے اوپر تاکہ میں اس کے اوپر بیان کر سکوں، یا غور کر رہی ہیں کسی بات کے اوپر تاکہ میں کسی سے بحث کر سکوں. ٹھیک ہے، یا غور کر رہی ہیں کہ تاکہ میرے کوئی اور بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اس وجہ سے غور کرنا نہیں، بلکہ حق کی طلب کی نیت سے غور کرنا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور میں اس حق کے اوپر عمل کر سکوں، اس نیت سے غور کرنا. کیا تم اس نیت سے غور نہیں کرتے اس کے اوپر کہ اندھا اور بینا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، تاکہ حق واضح ہو جائے اور تم بیناؤں میں داخل ہو جاؤ. اور اگر اس پر بھی وہ عناد سے بات نہیں، یعنی یہ ساری باتیں جو کی ہیں کہ بھائی ایمان والا جو ہے اس کے لیے تو نبی علیہ السلام کے اوپر اعتماد یہ محبوب چیز ہے، اور کفر اور گناہ اس کے لیے مکروہ چیز ہے. तो हम गौर क्यों करें इस बात के ऊपर, ताकि हमारे अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद महबूब चीज बन जाए, और कुफर और काफिरी और गुनाह और उस्यान ये हमारे लिए भी काबिल नफरत बन जाए, ठीक है, ताकि हम वाकई ईमान वाले बन जाए। एक तो होता है ना, जुबान से ढंडोरा पीटा हुआ है कि जी मैं ईमान वाली हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है ना, ये जुबान से तुमने ढंडोरा पीटा हुआ है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर कुफर की नफरत ही नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर गुनाह की नफरत ही नहीं है, खुद भी गुनाह करती हो, दूसरों को भी देखती हो करते हुए, तो कोई मसला नहीं होता तुम्हें, राइट? नहीं, तुम वाकई ईमान वाली बन जाओ कि तुम्हारे दिल के अंदर हर किस्म के गुनाह से नफरत पैदा हो जाए, चाहे वो किसी दूसरे को करते हुए देखो, चाहे अपने आप को करते हुए देखो, ठीक है, हर किस्म के गुनाह से नफरत पैदा हो जाए, इसलिए गौर करने की बात की जा रही है यहाँ पर। ऐसी खामखा गौर करने की बात नहीं जा रही, बल्कि इस नीयत से गौर करने की बात की जा रही है, बिनाओं में दाखिल हो जाओ। अच्छा, किसी को कोई सवाल हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, या तो मेरी गलती कि मैं अच्छे से आपके सामने बयान नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप फिर से पूछ लीजिए किसका क्या मतलब है। अच्छा, और अगर इस पर भी वो लोग इनाद से बाज ना आए, ये तुमने बड़ी इतनी जबरदस्त बात उनके सामने रख दी, ये वाले अल्फाज भी बयान कर दिए, और इनको जो है वो उनके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई अंधा और बिना बराबर नहीं हो सकते, इन दोनों का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर जमे रहे, अनाथ पर जमे रहे, तो फिर इनसे बहस मुबाहिसा बंद कर दो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असली काम है तबलीगी तबलीग रिसालत का, इसमें मशगूल हो जाए, ठीक है। यानी ये जो इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंटेशन है, इंटेलेक्चुअल एक है ना, आपको दलील दे रहे हैं, जहनी अकली दलील दे रहे हैं ना, इसके ऊपर जो है वो अगर फायदा आपको नहीं मिलता ना, तो बस आप इसको छोड़ दीजिए, और तबलीग रिसालत। तबलीग रिसालत का मतलब क्या, कि नकली दलील दलीलें जो है ना वो उन तक बस पहुंचा दीजिए, ठीक है, जो ऊपर से अल्लाह ताला ने आपको चीजें बताई हुई है ना, बस वो उनको पहुंचा दीजिए, यानी बता दीजिए कि कयामत के दिन ये होने वाला है, कयामत के दिन ऐसे हो, ऐसे ऐसा होने वाला है, ये आप उनको बता दीजिए, ठीक है। और ऐसे लोगों को कुफ्र व मासियत पर अजाब इलाही से खास तौर से डराइए, जो एतकादन या कम अज कम एहतमालन इस बात से अंदेशा रखते हैं कि कयामत में अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि अल्लाह ताला के सिवा जिस जिसको वो मददगार या सिफारिश करने वाला कुफार ने समझा था, उस वक्त उनमें से ना कोई उनका मददगार होगा और ना कोई मुस्तकिल शफाअत करने वाला होगा, शायद ये लोग अजाब से डर जाएं और कुफ्र मासियत से बाज आ जाएं। तो दावत तो तबलीग जब हम करते हैं ना किसी को, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है अकली दलाइल से उनको कन्विंस करने की कोशिश कर, अकली दलाइल से, ठीक है, कि भाई क्या तुम गौर नहीं करते कि एक अंधा और बीना जो है ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, इसमें फर्क होता है, या कोई और अकली दलाइल कि भाई देखो अल्लाह ताला ने जो है वो ऊंट को कैसा बनाया, अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत व इल समा कैफ रुफियत, है आसमान को नहीं देखते कि कैसे अल्लाह ताला ने उसको उठाया है, राइट? कोई और है जो कि उसको ऐसे उठा सके, तुम जिन बुतों की परस्तिश करते हो या जिन तुम लोगों की जो है वो अताअत करते हो, ठीक है, कि वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार है, उनके पास वो इख्तियार, क्या उनके पास इख्तियार इतना है कि वो आसमान को उठा सकें, क्या उनके पास इतना इख्तियार है कि वो जमीन को बिछा सकें, वह इलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत, राइट, क्या उनके पास इतना इख्तियार है कि वो जमीन को बिछा सके, ठीक है, तो ये अकली दलाइल होते हैं, ठीक है, अकल को झंझोड़ने वाले दलाइल, इनको अकली दलाइल कहते हैं। इस तरह से आप किसी बंदे से बात करते हैं कि भाई तुम शिर्क को छोड़ दो, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना, कि तुम जिस तरह अल्लाह की इबादत की जाती है उसी तरह तुम बंदों की भी इबादत कर रहे हो, बंदों की भी बात मान रहे हो, अल्लाह की बात को तोड़ करके बंदों की बात मान रहे हो, यानी बंदों की भी इबादत कर लो। इधर जो है वो मस्जिद में जा करके अल्लाह के काबतुल्लाह की तरफ सजदा करते हो, उधर मार्केट में जा करके बंदों की तरफ सजदा करते हो, बंदों की अतात करते हो, अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके बंदों की अतात करते हो। तो तुमने ये जो शिर्क मचाया हुआ है, इस शिर्क को खत्म कर दो। कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के इबादत के काबिल, अतात के काबिल, अल्लाह के अलावा कोई अतात के काबिल नहीं। ठीक है, तो ये अकली दलाइल के जरिए से दावत दी जाती है किसी, और इस तरह के बहुत बेशुमार अकली दलाइल जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिद्दी लोग होते हैं, वो अकली दलाइल नहीं मानते। ठीक है, तो अब दूसरा काम करने का क्या होता है फिर, अकली दलाइल के बाद दूसरी तरीका क्या होता है कि नकली दलाइल बताया जाए। नकली दलाइल का मतलब कि जो हमें बताया गया है ना कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा होने वाला है, वैसा नहीं होने वाला है, ये चीजें लोगों तक पहुंचा दो, लोगों के सामने जो है वो ये तफसीलात रख दो, इसको कहते हैं नकली दलाइल लोगों तक पहुंचा देना। अब ये नकली दलाइल जो होते हैं, बल्कि दलाइल का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये समझ लें कि जो नकली मालूमात, नकल मालूमात का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, जो मालूमात तुम्हें दी गई है मुस्तकबिल के बारे में, वो मालूमात उन तक पहुंचा दो। ठीक है ना, शायद कि वो डर जाए। ठीक है, असली दलाइल तो बस कर लिया ना तुमने जितने करने, अब तुम जो है वो मालूमात उन तक पहुंचा दो, भाई ऐसा होने वाला है। जैसे कि हमारे मशायख जो है वो एक शेर भी जो है ना वो अक्सर पढ़ा करते हैं अपने बयान के अंदर, खुसूसन तबलीगी जमात के बयान जो होते हैं उनके अंदर, कि क्या है वो, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। ठीक है, जन्नत भी है दोजख भी है, हाँ जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जज़ाकुमुल्लाह, एक लफ्ज से जो है वो बात याद आ जाती है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। ठीक है, यानी ये होने वाला है, जैसा तुम करोगे ना वैसे ही तुम भरोगे, दुनिया में भी तुम्हें सजा मिलनी शुरू हो जाएगी और मरने के बाद भी सजा मिलनी शुरू हो जाएगी, और जन्नत भी है कि तुम नेकी करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, मुस्तकबिल में मिलेगी। ठीक है ना, अब तुम नहीं मान रहे कि जन्नत मिलेगी तो चलो मर के देख लो, जो लोग मान रहे थे ना वो तुम्हें नजर आ जाएंगे जन्नत में जाते हुए, तुम तो नहीं जाओगे जन्नत में लेकिन वो नजर आ जाएंगे तुम्हें जन्नत में जाते हुए, और तुम जो है वो अपने आप को जहन्नुम में जाते हुए देख लोगे। तो ये होता है कि जो आपको मालूमात मिली है कि ऐसा है, आपने खुद भी तो नहीं जन्नत देखी, आपने खुद भी तो जहन्नुम नहीं देखी, लेकिन आप उन मालूमात को आगे पहुंचा दें, इसको कहते हैं तबलीग रिसालत। ठीक है, शायद वो डर जाए, हो सकता है इस वाली बात को सुन करके वो डर जाए। ठीक है, इस नीयत के साथ हम तक पहुंचा दें। यहाँ पर वो दोनों बातें अल्लाह ताला ने इन दो आयात के अंदर कवर कर ली है। ठीक है, अकली दलाइल के जरिए से बात समझाना और नकले मालूमात के जरिए से बात को समझाना, तबलीग करना। मारूफ मसाइल में ये हम जुमे के दर्स के अंदर पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ मौजूद ना हो तो थोड़ा सा मुख्तसर करके इसको हम आगे बढ़ते हैं, कि नकली दलाइल में यही फरमाया कि कुफार अरब की तरफ से फरमाइशी मौजूदात का मुआयनदाना मुतालबा, ये बार बार जो है ना वो मौजूदात का मुतालबा करते रहते थे, नबी अलैहिस्सलाम साहब हमें ये दिखा दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर भी है कि आप हमें सारे के सारे खजाने ला करके हमारे सामने रख दीजिए, आप जो है वो गैब की बातें हमें सारी की सारी बता दीजिए, और आप जो है वो फरिश्ता क्यों नहीं है, ठीक है आप फरिश्ता बन करके हमें दिखा दीजिए या फरिश्तों को उतार के दिखा दीजिए। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को जो दलाइल देने थे ना कि आप ही अल्लाह के नबी हैं और आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला ने वो सारे दलाइल पहले से दिए हुए थे, पहले से दिए हुए थे। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम इवन बच्चों की क्लास जो आप में से हफ्ते के दिन जो सीरत सहाबा की क्लास सुनते हैं, उसके अंदर हम एग्जैक्टली अभी यही वाला बयान पढ़ने वाले हैं कि हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, ठीक है, जो कि अशरा मुबशरा सहाबा में से थे, वो नबी अलैहिस्सलाम की बिरसत के वक्त ही, जब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया और आपसे ने तबलीग का काम शुरू किया, बिल्कुल उसी वक्त जो है तलहा रजी अल्लाह ताला अन, जो है ना तलहा बिन उबैदुल्लाह, वो गए हुए थे कहीं शाम के बुसरा के मार्केट्स के अंदर वो तजारत करने के लिए। तो वो एक मार्केट से गुजर रहे थे कि एकदम से जो है ना वो एक घर था, उसकी खिड़की खुली और उसके अंदर से एक राहिब ने जो है ना वो अपना चेहरा निकाल करके बोलना शुरू कर दिया कि ऐ लोगों, तुम में से कोई मक्का वाला है, हरम वाला है तुम में से कोई? ठीक है, क्योंकि मक्का मुकरमा को हरम जो है सारे के सारे मानते थे, इवन ईसाई भी मानते थे, हरम कहते थे उसको। ठीक है, तो कोई हरम वाला है तुम में से? तो तलहा जताना ने जब ये आवाज सुनी तो उन्होंने कहा मैं हूं हरम वाला, यानी मैं मक्का मुकरमा से आया हूँ। तो उसने जो है, राहिब ने तलहा जताना से पूछा कि क्या अहमद का जहूर हो गया है, क्या अहमद का जहूर हो गया है? तो उन्होंने कहा नहीं, अहमद कौन है भाई, मैं नहीं जानता किसी अहमद को। क्यों? इसलिए कि मक्का मुकरमा में नबी अलैहिस्सलाम को अहमद नहीं कहा जाता था बल्कि मोहम्मद कहा जाता था, ये वाला नाम दुनिया वालों में मशहूर, अहमद तो आसमान में मशहूर। ठीक है, तो अब इन लोगों की जो किताबों के अंदर खबरें मौजूद थी ना ईसाइयों और यहूदियों की, तो उसके अंदर जो है वो अहमद का नाम ज्यादा मौजूद था। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी मैं तो किसी अहमद को नहीं जानता। तो उसने जो है वो और बातें करी। फिर तलहा रज़ी अल्लाह जो है ना वो जब सफर करके वापस मक्का मुकरमा आए तो उनको ये बात याद थी कि ऐसी बात जो है वो राहिब कर रहा था। तो उन्होंने फिर लोगों से पूछना शुरू किया, तो लोगों ने बताया कि हाँ ये हुआ है यहाँ पर। उन्होंने पूछा कोई नई बात हुई है, कोई नई बात हुई है? हाँ ये नई बात हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत का दावा कर दिया है और अबू बकर सिद्दीक जो है वो उसके ऊपर ईमान ले आए। अब अबू बकर सिद्दीक जो है रजी अल्लाह तआला अन, वो तलहा रजी अल्लाह तआला अन के खत
हाँ तो
अमीन के, तो तलहा रजी अल्लाह तआला अन जो है वो सीधा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन के पास पहुंचे कि भाई ये मेरे ज्यादा करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, मैं इनसे पूछूं कि आपने क्या किया है, आप ईमान लेकर के आ गए, किस बात पे ईमान लेकर के आ गए? ठीक है, तो उन्होंने सारी तफसीलात बताई और पकड़ करके नबी अलैहि सलाम के पास ले गए इनको। चलो चलो नबी अलैहि सलाम के पास चलो और ये सारा वाकया तुम बताना कि नबी अलैहि सलाम भी खुश होंगे। तो आप के पास तलहा रजी अल्लाह तआला अन को ले गए और नबी अलैहि सलाम भी उन्होंने बताया कि भाई हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने ये दावत देनी शुरू करी है, तो क्या तुम ईमान लेकर आओगे? तो तलहा रजी अल्लाह तआला अन, हाँ मैं भी ईमान लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के बेशुमार वाकयात जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके थे, लोगों के सामने ये सारी हकीकत खुल चुकी थी कि यही जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ठीक है, तो जब ये सारा काम पहले से हो गया, अब तुम आगे से जो है वो तफरीहन ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो दिखा दीजिए हमें, वो करवा के दे दीजिए और ये ला के दे दीजिए और वे ला करके दे दीजिए। अब ये तो बिल्कुल गैर संजीदा किस्म का एटीट्यूड होता है ना। ठीक है, सोया कि तुम टाइम पास करने के लिए जो है ना वो इस किस्म की जो है वो बस कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, इरादा तुम्हारा जो है वो कोई नहीं है बात मानने का। ठीक है, तो वो हजरत ने यहाँ पे फिर सारी की सारी तफसील जो है वो बयान करी है। तो ये जो तीसरा पैराग्राफ है इस पेज के अंदर, इसमें लिखते हैं कि उनके मुताबिक मुवाफिक अजीम शान, ऐसा अजीम शान मौजूदा दायर होने के बावजूद, यानी वो जो शक कमर का डिमांड किया उन्होंने कि भाई आप चांद को दो टुकड़े करके दिखा दीजिए। ठीक है, अब इन्होंने ये क्यों कहा था कि दो टुकड़े करके दिखा दीजिए? इन्होंने इस वजह से कहा था कि ये तो ऐसा काम है जो कोई भी नहीं कर सकता, इस नीयत से उन्होंने ये मुतालबा किया था कि चांद को दो टुकड़े करके दिखा दीजिए। जैसे कि आप भी किसी को अगर जिच करना चाहती हैं तो आप उससे कोई ऐसा काम करने के लिए कहती हैं जो कि वो कर ही नहीं सकती। मकसद क्या होता है? उसको जिच करना, उसको बिल्कुल जो है ना वो हरा देना, चुप कर देना उसको। ठीक है ना, अच्छा तुम्हें ये काम तुम समझते हो कि ये भी कर सकती हो, चलो तुम ये कर दो। ठीक है, अब कोई अजीब गरीब किस्म की बात आपने कर दी। इन्होंने ऐसा किया लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी के अल्लाह ताला ने उनके इस वाले मुतालबे को पूरा भी करवा दिया, फिर चांद को दो टुकड़े करवा भी दिया। लेकिन चूंकि इनके तो इरादा ही नहीं था बात मानने का, इन्होंने जो है वो इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं मानते, फिर भी नहीं माना इन्होंने। ठीक है, अगले सफ़े पे आ जाएं, जो स्क्रीन को तो शेयर उन्होंने किया हुआ उनसे। तो आगे जो है फरमाया कि कुफार मक्का ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ औकात में तीन मुतालबे पेश किए थे। अव्वल ये कि आप वाकई अगर अल्लाह के रसूल हैं तो बजरिए मौजज़ा हमारे लिए तमाम दुनिया के खजाने जमा कर दीजिए, यानी हमको मालिक बना दीजिए, जैसे हम चाहें उन खजानों में से हम खर्च करें। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि हमारे सामने जमा कर दिए हम उनको देख के खुश हुआ करेंगे, नहीं, बल्कि हमें मालिक बना दीजिए इन तमाम खजानों का। दूसरे ये कि अगर आप वाकई सच्चे रसूल हैं तो हमारे मुस्तकबिल में पेश आने वाले तमाम मुफीद या मुजिर हालात और वाकयात बता दीजिए, ताकि हम मुफीद चीजों के हासिल करने और मुजिर चीजों से बचने का इंतजाम पहले ही कर लिया करें। इसके ऊपर भी एक बड़ी अहम बात हुई थी जुमे के दरस में, किसी को याद है? ये थोड़ा सा क्विज भी तो होना चाहिए ना क्लास के अंदर, क्योंकि ये क्लास है, अब ये बयान तो है नहीं क्लास में, तो फिर आपसे भी हम सवाल पूछ सकते हैं और आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो याद है इस वाले लाइन को साजिश ने एक नुक्ता बयान किया था, बड़ा अहम नुक्ता है वो, और उसके ऊपर आप लोगों से रिलेटेड भी एक बात करनी है। क्या कहा था कि अगर आप वाकई सच्चे रसूल हैं तो हमारे मुस्तकबिल में पेश आने वाले तमाम मुफीद या मुजर हालात और वाकयात बता दीजिए, ताकि हम मुफीद चीजों के हासिल करने और मुजर सूरतों से बचने का इंतजाम पहले ही कर लिया करें। बाहर तो ये बड़ी अच्छी बात लग रही है, वैसे आप हमें फ्यूचर के हालात बता दें ताकि नुकसान से बच जाएं हम लोग, तो इसमें बुराई क्या है? पार्शियल पैकेज चले माशाल्लाह, इसका मतलब है आपको कम से कम याद तो है और आपने दो अल्फाज भी जो है ना वो सारी तफसील, वो क्या समंदर को कूजे में बंद करना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, उन्होंने और तफसील भी बयान कर दी कि इंतजाम हम अपनी अकल से करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो लोग ये समझते थे कि वो खुद बच सकते हैं। हाँ मोर लेस इसी तरह की बात, कि वो चाहते थे कि आप हमें मुस्तकबिल की चीजें बता दीजिए, लेकिन हमें बचने का तरीका ना बताइए, बचने का इंतजाम हम खुद करेंगे, अपनी अकल से करेंगे। ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की तो मजबूरी थी ना, क्या मजबूरी थी कि भाई अल्लाह के हुक्मों को बताना था कि भाई तुम मुस्तकबिल के जो बुरे हालात या मुश्किल हालात पेश आएंगे ना, उनसे बचने का तरीका क्या है? अल्लाह के हुक्मों पे अमल करना, राइट? अल्लाह के हुक्मों पे अमल करोगे तब तुम मुस्तकबिल के बुरे हालात से बचोगे। ठीक है, लेकिन ये तो अल्लाह के हुक्म पे अमल ही नहीं करना चाहते थे, और ये तो इतने मुतकब्बिर थे कि ये तो अपनी अकल को जो है वो, अपनी अकल, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने जो हिफाजती इकदाम करने, इनको जो है वो सब कुछ समझा करते थे, जैसे हम। ठीक है ना, जैसे हम, बिल्कुल यही मामला है। हम चाहते हैं कि हमें जो है ना तुम, आप मालूमात दे दें, लेकिन बचने का तरीका आप मत बताएं, ये हम खुद करेंगे क्योंकि हमारी अकल काफी है। ठीक है ना, चलो शुक्र है खुदा का कि हमारी अकल जो है ना वो मुस्तकबिल का हाल हमें नहीं बता देती, वरना जो रसूल से कहते हैं कि मुस्तकबिल का हाल भी हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसा मुस्तकबिल को छुपाया है, ऐसा मुस्तकबिल को हमसे छुपाया है कि रसूल से ही पूछना पड़ता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। ठीक है, तो रसूल से इतना तो पूछते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन उस मुस्तकबिल यानी उस सिचुएशन में कैसे फायदा हासिल करना है, कैसे नुकसान से बचना है, ये रसूल से सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, ये एटीट्यूड हम सबका है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, हुक्मों पे यानी हम इस तरफ जाना ही नहीं चाहते ना। ठीक है, जिस तरह से माजी के बारे में भी हमारा यही मामला है, माजी के बारे में कैसे मामला है हमारा, ये कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, ठीक है, तो वो मुसीबत किस वजह से आती है? अल्लाह के हुक्म को तोड़ने की वजह से आती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमें आके ये कह दे कि भाई ये गुनाहों की वजह से ये वाली मुसीबत आई है, तो हम कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि गुनाहों की वजह से मुसीबत आई हो। ये मुसीबत तो फलानी की वजह से आई है, ये मुसीबत तो उस वजह से आई है, इस वजह से आई है, किसी दूसरे की वजह से आई है, मेरे गुनाहों की वजह से तो थोड़ी मुसीबत आई है। हम बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते इस वाली बात को। यही मामला फ्यूचर के साथ भी हमने यही रखा हुआ है कि फ्यूचर के बारे में भी हमें बता दोगे ना तो अल्लाह के हुक्म को साथ साथ मत बताना हमें, ठीक है, क्योंकि हमने अल्लाह के हुक्म को हमने नहीं माना, ना उसके ना मानने के ऊपर कोई हमें अफसोस करना है, नादिम होना है, और ना हमने फ्यूचर के अंदर अल्लाह का हुक्म माना, ठीक है। तो यही मामला इनका भी था। तो कहा जी आप बता दीजिए बस, बाकी हम खुद सेट कर लेंगे सारा मामला। तीसरे ये कि हमारी समझ में नहीं आता कि हमारी कौम का एक इंसान जो हमारी तरह माँ बाप से पैदा हो, तो इसके बारे में भी जुमे में बात हुई थी कि भाई इंसान का तकब्बुर, नफ्स का तकब्बुर जो है ना, वो किसी नॉर्मल इंसान के सामने जो कि अपने जैसा हमें नजर आता हो उसके सामने जो है ना वो अपने आप को सपोर्ट करने से हमें रोकता है, ठीक है। हमें कोई अजूबा चाहिए, अजीब व गरीब किस्म की कोई चीज चाहिए, चाहे वो फिजिकली हमें नजर आ रही हो या हम जो है वो तखयल के अंदर उसको अजीब व गरीब बना लें, तब हम जो है ना वो उसको कोई इज्जत देंगे, वरना हम उसको इज्जत नहीं देंगे, ठीक है। तो नबी तो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया ही नहीं, ठीक है, कि कोई बहुत ही बड़ा सा कोई जायंट होता, ठीक है, जो कि फूक मारता हो सारे के सारे जो है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले आते, नबी तो ऐसा बनाया ही नहीं, ना नबी को जो है वो उड़ने वाला बनाया, ना नबी को पर दिए, ना नबी को जो है वो पानी पे चलने की जो है वो सलाहियत दी, ठीक है, कोई भी नहीं, बस याकुलून ताम व यमशी फिल अस्वाक, वो खाना भी खाते हैं और खाना खाने के अंदर फिर जिंदगी की सारी जरूरियात शामिल हो जाती है, खाना भी खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद जाहिर सी बात है कि खाने को निकालने के लिए कुछ दूसरा भी इंतजाम करना पड़ता है, बाथरूम वगैरह का भी, तो नबी का नबी की जिंदगी, नबी नबियों की जिंदगी ये भी शामिल है, ठीक है। और फिर जो है वो शादी करना, बीवी बच्चों के साथ जो है रहना, जिस तरह आम लोग शादी करते हैं बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, ठीक है, और नबी की जिंदगी में और भी चीजें, यानी बकरियां भी चरा रहे हैं, तो तिजारत भी कर रहे हैं, लोगों से पैसा वसूल भी कर रहे हैं, लोगों को पैसा दे भी रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से बाकी इंसान रहते हैं। तो अब इनके कहाँ मैं हम इनको कैसे, और कोई नबी को जो है वो कोई ऐसा जो है वो ऐसा भी नहीं बनाया कि भाई सारे खजाने बड़े बड़े जो है बागात नबी अलैहिस्सलाम को तो नहीं दिए सब कुछ, तो यही बोलते थे ना कि नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला को कोई और नहीं मिला, करियतैनि अजीम, ये जो हमारी दो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं मक्का मुकरमा और ताइफ, इनके अंदर बड़े बड़े बिलियनियर्स मौजूद हैं, अल्लाह को उनमें से कोई नहीं मिला अल्लाह अपना नबी बनाने के लिए, है ये एकदम जो नाउज बिल्ला मुफलिस थे और गरीब घराने के, क्योंकि वालिद तो थे नहीं, अबू तालिब राइट, ख्वाजा अबू तालिब की जो है वो उसमें रहते थे नबी अलैहिस्सलाम, और उनकी घर में तो बड़ी तंगदस्ती थी, बड़ी तंगदस्ती थी उनके घर में, ठीक है। तो इस तरह की बातें करते थे कि इतने बिलियनियर्स मौजूद हैं, मिलियनियर्स मौजूद हैं, और अल्लाह को कोई और नहीं मिला था इन दो अजीम बस्तियों के अंदर के, उसको अपना नबी बना देते और इनको बना दिया नबी अब, ठीक है। तो बस ये क्या होता है, ये अपना तकब्बुर होता है, मैं क्यों झुकूं किसी ऐसे इंसान के सामने जो कि मेरे जैसे है। आप फिर वही है कि भी फरिश्ता हो जाते या खुदा बन जाओ या फरिश्ता बन जाओ या कोई ऐसे बन जाओ, ठीक है, जो कि मुझसे बढ़ करके, तब मैं मानूंगा वरना तो मैं नहीं मानूंगा। और जाहिर ऐसा शख्स जो कि ये डिमांड करता है ना कि मुझसे बड़ा बन जाओ, तो उसको कभी भी कोई अपने से बड़ा नजर ही नहीं आता, वो किसी की भी नहीं मानता सर, क्योंकि वो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझता है, अना रब्बुकुम अल आला। अच्छा, इन तीनों सवालात के जवाब में इरशाद हुआ कि कह दीजिए इनसे, कुल ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब वला अकूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई कि इन लोगों के ला यानी सवालात के जवाबात में आप इनसे साफ कह दीजिए कि तुम जो मुझसे खजाइन दुनिया का मुतालबा करते हो, मैंने कब ये दावा किया है कि अल्लाह ताला के सब खजाने मेरे हाथ में हैं? ठीक है, आखिरत के खजाने तो मैं तुम्हें खुद बता रहा हूं कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो अल्लाह तुम्हें आखिरत के खजाने देगा, जन्नत के अंदर देगा, ठीक है। लेकिन दुनिया के खजानों की तो कोई वादा नहीं किया अल्लाह ताला ने कि दुनिया के भी सारे खजाने तुम सबको मिल जाएंगे। तो मैंने कब ये दावा किया है कि अल्लाह ताला के सब खजाने मेरे हाथ में, और तुम जो ये मुतालबा करते हो कि मुस्तकबिल में पेश आने वाले हर मुफीद या मुजर मामले और वाकई को मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कब ये दावा किया है कि मैं गैब की हर चीज को जानता हूँ? जो अल्लाह ताला बता देते हैं बस वही मुझे पता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं पता, ठीक है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बहुत कुछ बताया लेकिन सब कुछ नहीं बताया। तो और तुम जो मुझसे मुझ में फरिश्तों की मखसूस सिफात देखना चाहते हो, मैंने कब कहा है कि मैं फरिश्ता हूँ? खुलासा यह है कि मुझसे दलील उस चीज की मांगी जा सकती है जिसका मैंने दावा किया है, यानी यह कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, जिसका मैंने दावा किया है ना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो उसकी दलील मांगो भाई। तो उसकी दलील जो है वो पहले से अल्लाह ताला ने दी हुई है, और उसकी दलील जो है वो मजीद भी आती रहती है। कुरान मजीद सबसे बड़ी उसकी दलील, सबसे बड़ा मौजा नबी अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद खुद था। तो उसकी भेजी हुई हिदायत इंसानों को पहुंचाता हूँ, यानी इल्म देता हूँ इंसानों, तालीम देता हूँ इंसानों, और खुद भी उनका इत्तेबा करता हूँ। खाली तालीम नहीं देता बल्कि उस तालीम पे खुद भी अमल करता हूँ, दूसरों को भी उसकी ताकीद करता हूँ। चुनाचे इसके लिए एक दो नहीं बेशुमार वाजह दलाइल पेश किए जा चुके हैं, ठीक है। चले आगे है कि इस दावा रिसालत के लिए ना यह जरूरी है कि अल्लाह का रसूल अल्लाह के सब खजानों का मालिक हो जाए, ठीक है, यानी रिसालत की दावा के दावे को प्रूफ करने के लिए खजानों का मालिक होना कोई जरूरी नहीं, और ना ये जरूरी है कि वो खुदा ताला की तरह गैब की हर छोटी बड़ी चीज से वाकिफ हो जाए, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज से तो सिर्फ खुदा ही वाकिफ है, ठीक है। तो रसूल के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो हर छोटी बड़ी चीज से वाकिफ हो जाए, और ना ये जरूरी है कि वो इंसानी और बशरी सिफात से जुदा कोई फरिश्ता हो जाए, ठीक है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। बल्कि रसूल का मनसब सिर्फ इतना है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई वही का इत्तेबा करे, जिसमें खुद उस पर अमल करना भी दाखिल है और दूसरों को इस पर अमल करने की दावत देना भी दाखिल है, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ना, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि अगर तुम अल्लाह ताला की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसमें क्या हुक्म है, क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, कि अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम को जमा देगा। भाई इसी बात की इसके अंदर दावत दी जा रही है, हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, ठीक है, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि बस मैं खुद दीन पे चल रहा हूं तो ये अल्लाह के दीन की मदद हो गई, नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाने का काम भी करो तुम, तब अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे, यानी सालेह भी बनो और मुसलेह भी बनो, मुसलेह भी बनो यानी इस्लाह की मेहनत भी करो, ठीक है। तो ये है वही की इत्तबा करना कि सालिश भी बनो, अल्लाह करे आप लोग लिख रहे हैं, सालिश भी बनो और मुसलिह भी बनो, ये है अल्लाह की वही का इत्तबा करना, और मैं यही कर रहा हूं, ठीक है, कि खुद भी जो है वो गुनाहों से बच के जिंदगी गुजारता हूँ और दूसरों को भी जो है वो गुनाहों से बचने की दावत देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो एक पैराग्राफ है ये बड़ा अहम पैराग्राफ है, सारी पैराग्राफ्स अहम है लेकिन ये भी, अब चूंकि पीछे की बातें तो काफी रिपीट भी हो चुकी हैं, ये जो है ना अभी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कि इस हिदायतनामे से मनसबे रिसालत की हकीकत को भी वाजह फरमा दिया गया, मनसबे रिसालत की हकीकत को, यानी ला अकूलु लकुम वाली जो बातें हैं ना, इनसे मनसबे रिसालत, ये रिसालत का जो मनसब है, जो मकाम है, इसकी हकीकत क्या है, और रसूल के बारे में जो गलत तसव्वुरात उन लोगों ने कायम कर रखे थे या हम लोगों ने कायम कर रखे, उनका इजाला भी कर दिया गया, और इसके जमन में मुसलमानों को भी ये हिदायत कर दी गई कि वो ईसाइयों की तरह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान तो हैं ना, तो हमें भी हिदायत कर दी गई कि वो ईसाइयों की तरह अपने रसूल को खुदा ना बनाए और खुदाई का मालिक ना करार दें, ठीक है, खुदाई सिफात रसूल को ना दें, जैसे कि ईसाइयों ने खुदा का बेटा ईसा अलैहि सलाम को बना दिया और खुदाई वाली सिफात जो है वो ईसा अलैहि सलाम को देनी शुरू कर दी, ऐसा ना करें। उनकी अजमत व मोहब्बत का तकाजा भी यही है, यानी रसूल की अजमत और रसूल की मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि उनके मुतअल्लिक यहूद व नसारा की तरह इफरात व तफरीत में और गुलू में ना पड़ जाएं। गुलू कहते हैं बात को बढ़ा देना, ठीक है, यानी इफरात कर देना, बढ़ा देना, जो जो उसका बात का असल मुकाम है या असल हकीकत है उससे बढ़ा चढ़ा करके उसको बयान करना, और तफरीत का मतलब होता है घटा करके बयान करना, ठीक है, ना उस एक्सट्रीम में जाएं ना इस एक्सट्रीम में जाएं, बल्कि दरमियान का, जो असल दरमियान के रास्ते से मुराद क्या होता है, जो असल रास्ता है, जो कि बताया गया है कि हाँ यही है, यही तरीका है, यही असल हकीकत है, उसी को दरमियान की चीज कहते हैं, ठीक है, यानी दरमियान का लफ्ज जो है ना, ये इसकी हकीकत क्या है कि दरमियान किसको कहते हैं, तो अब हम जब दरमियान की बात करते हैं ना, तो हम जो है ना वो यानी ज्यादा से ज्यादा लेंथ के हिसाब से देखते हैं कि भाई ये अच्छा इतनी लंबाई है 12 फिट, 12 फिट लंबाई है तो दरमियान जो है वो 6 फिट होगा, ठीक है ना, हमने मैथ पढ़ी हुई है, ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, ठीक है, तो अब हम जब दरमियान का लफ्ज आता है ना, मिडिल का लफ्ज आता है, तो हमारा जहन जो है ना वो ज्योमेट्रिकल शेप्स की तरफ चला जाता है कि अच्छा दरमियान का मतलब यह है कि अगर 12 फिट है तो उसका दरमियान जो है वो 6 फिट जहां पर बनता है ना वो दरमियान होगा। अच्छा, और दूसरी बात, दरमियान जो है वो वजन के हिसाब से अगर देख लें कि भाई बहुत ज्यादा वजन और बहुत कम वजन, तो दरमियान का वजन जो है वो ऐसा होगा कि जो कि ना ज्यादा फील होता हो ना जो है वो कम फील होता हो, उसको दरमियान का वजन कहें, ठीक है, या ये कि भाई अगर 20 किलो और 10 किलो, ठीक है, एक वजन जो है वो 20 किलो है, एक वजन जो है वो 10 किलो है, तो दरमियान का वजन जो है वो हम कहेंगे जी 15 किलो होगा, ठीक है, तो हम इस तरह से दरमियान को सोचते हैं, ठीक है, वेट के हिसाब से दरमियान, लेंथ के हिसाब से दरमियान, या हाइट के हिसाब से दरमियान, ठीक है, या खूबसूरती के हिसाब से दरमियान, अच्छा जी बहुत खूबसूरत है, ये बहुत बदसूरत है, दरमियान की जो है ना वो कोई बस एक नॉर्मल सी शक्ल जो है उसको हम कहेंगे दरमियान की शक्ल है, ठीक है, लेकिन नहीं, जब दीन के कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज़े दरमियान आता है ना, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता जैसे कि हम समझ रहे हैं, जब दीन के कॉन्टेक्स्ट में दरमियान का लफ्ज आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता, बल्कि क्या होता है इसका मतलब कि जो किसी चीज की हकीकत है ना, रियलिटी है ना, जो सच है ना, वो दरमियान का रास्ता है, वो दरमियान है, जो सच है वो दरमियान है, ठीक है, और मजीद इसमें थोड़ी सी और तफसील अगर जाए तो क्या आएगा, दीन के कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज दरमियान का मतलब क्या होगा, अगर आप में से कोई बता दे, सिरात मुस्तकीम, नहीं ये कोई और बताए, दीन के कॉन्टेक्स्ट में दरमियान का हमने आपको अभी क्या बताया कि जो सच है वो दरमियान, ठीक है, जो हकीकत है वो दरमियान, ठीक है, यानी जैसा अल्लाह ने कोई चीज डिफाइन करी है ना वही दरमियान है उस चीज के बारे में, ठीक है, सुन्नत नबी, ठीक है, ये भी दरमियान का तरीका है, ठीक है, और बताएं, सुन्नत नबी ये भी दरमियान का रास्ता है, ठीक है, ये भी सही है, जब और व्हाट अबाउट हक, हक राइट्स, राइट, इस कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि दरमियान का रास्ता क्या होता है, हक के कॉन्टेक्स्ट, बल्कि ये वो रियलिटी वाला हक नहीं बल्कि राइट्स वाला हक, हुकूक, ठीक है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में दरमियान का रास्ता कौन सा होता है? वैसे क्लास का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, तो फिर हम खुद ही बता देते हैं। हुकूक के कॉन्टेक्स्ट में दरमियान का रास्ता ये होगा कि जिसके जो हुकूक अल्लाह ने बताए हैं ना, वो हुकूक उसको देना, बल्कि वो हुकूक उसके मानना और फिर उसको देने की कोशिश करना, ये दरमियान का रास्ता। जो जिसके हुकूक अल्लाह ने बताए हैं उसके उन हुकूक को मानना, तस्लीम करना और उसको वो हुकूक देने की कोशिश करते रहना, ये दरमियान का रास्ता है। या वो हुकूक देना, हम कोशिश करते रहना तो अपना अपना वो क्या कहते हैं हिस्सा निकाल करके बात बोलते हैं, कोशिश करना, क्योंकि हाँ देना तो हमारे बस में है नहीं, हम इतने कमजोर हैं हम दे ही नहीं पाते हैं ना, तो कोशिश करना, ये है दरमियान का रास्ता। जिसका जो हक अल्लाह ने डिफाइन किया है, अल्लाह ने जो हक मुकर्रर किया, उस हक को तस्लीम करना और उस हक को अदा करना, ये दरमियान का रास्ता, ठीक है? तो अब जो है वो इफरात क्या है और तफरीत क्या है। इफरात कहेंगे कि उसको उसके हक से बढ़ा करके कुछ और हक देना शुरू कर देना, बल्कि इन अदर वर्ड्स एक्चुअली क्या होता है, किसी और का हक जो है वो इसको देना शुरू कर देना, ये इफरात कहलाएगा। किसी और का हक इसको देना शुरू कर देना जो कि अल्लाह ने इसका हक नहीं बनाया था, इसको इफरात कहेंगे। और तफरीद किस चीज को कहेंगे कि जो अल्लाह ने इसका हक बनाया था इसको वो हक भी ना देना, इसको तफरीद कहेंगे, ठीक है जी? काश के आप लोग लिख लें इस बात को, लिख लें, क्योंकि ये जो बात है ना, ये सिर्फ जो है वो हम यानी बुकरातियत यहां नहीं कर रहे हैं कि हम आपको बुकरात बना रहे हैं, ओ जी माशाल्लाह क्या जबरदस्त इन्होंने आरिफाना बात बोली है, समझ में नहीं आ रही हमारी ना, इतनी आरिफाना बात कर दी है समझ में नहीं आ रही। नहीं, ये ऐसी बात है जो कि एक-एक लम्हा आपको फायदा देगी। अभी क्लास खत्म करेंगे ना, जूम सबके यहाँ से अभी लीव करेंगे ना, उसके फौरन बाद ये आपको फायदा देनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती है ना, तो उधर तो और भी ज्यादा फायदा देगी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम फौरन फौरन फायदा देगी, ठीक है? क्योंकि वही सास बहू, वही शौहर, वही जो है वो औलाद, वही जो है वो भाई बहन, वही जो है ना, इन सब के साथ ये चीज अप्लाई होती है कि भाई जिसका जिसने अल्लाह ने हक बनाया है उसको वो हक देना, किसी दूसरे का हक उठा के उसको ना दे देना। बीवी, राइट? अब आपके शौहर साहब जो हैं वो आपको बीवी कहते हैं, और अपनी अम्मी को क्या कहते हैं, अम्मी को बीवी कहते हैं, नहीं है? कुछ नाउज बिल्ला बहुत ही घटिया किस्म के लोग जो हैं वो कहते हैं इस तरह की बातें, लेकिन माँ माँ है, बीवी बीवी है, ठीक है? माँ के हुकूक जो अल्लाह ने बनाए हैं वो माँ को देना, माँ के हुकूक जो अल्लाह ने बनाए हैं वो माँ को देना, ये आप इसी बात को लिख लीजिए। अच्छा, नहीं, इन्होंने कहा कि जो आपने फरमाया एक दफा और बता दीजिए, ठीक है? उम्मीद है कि आप लिख ही रही होंगी। अल्लाह ताला ने जिसका जो हक बनाया है उसके उस हक को मानना और उसको वो हक देना, ये दरमियान का रास्ता है, ये सिराते मुस्तकीम है, ये दरमियान का रास्ता है, ये इतदाल का रास्ता है, ये बताया था। और इसमें इफरात क्या है कि उसको उसका हक देने की बजाय किसी दूसरा का हक, दूसरे का हक उसको देना शुरू कर देना, ये इफरात है। किसी दूसरे का हक उसको देना शुरू कर देना, ये इफरात है। और तफरीत क्या है इसके अंदर, اعتدال کے راستے میں تفرید کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق بنایا تھا اس کو وہ حق بھی نہ دینا اور کسی دوسرے کا حق دینا تو بالکل بھی نہیں، لیکن وہ حق بھی نہ دینا اس کو، ٹھیک ہے، اس کو تفرید کہتے ہیں. اب جو ہے نا وہ آپ ماں کی مثال سے سمجھ لیں کہ ماں کا اللہ تعالیٰ نے حق بنایا ہے بیٹے کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے ان شاء اللہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہیں یا بیوی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. ماں کا جو اللہ نے حق بنایا ہے بیٹا ماں کو وہی حق دے، تسلیم کرے اس کے حق کو اور اس کو وہ والا حق دے. لیکن افراد کیا کرے گا، وہ افراد کیا ہو جائے گا کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے، اس کے گھر میں اس کے ساتھ ایک بیوی بھی رہتی ہے. بیوی کا جو حق اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ بیوی کا حق اٹھا کر کے اپنی ماں کو دینا شروع کر دے، ہے نا، ماں کو ماں والا حق بھی دے جیسا بھی دیتا ہے، اصل میں جانا وہ ماں کا بھی حق اس کو نہیں دے رہا ہوتا. خیر ٹھیک ہے، ماں کو اس کا حق دے رہا ہے لیکن بیوی کا حق بھی اٹھا کے ماں کو دینا شروع ہو جائے، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ اعتدال کے راستے میں افراد کہلائے گا. ماں کے ساتھ اب یہ اعتدال کا معاملہ نہیں کر رہا بلکہ یہ افراد کر رہا. اور تفرید کیا ہوگا کہ ماں کو جو ماں کا حق دینا چاہیے تھا وہ بھی نہیں دے رہا، یعنی بدتمیزی کر رہا ہے ماں کے ساتھ، بے ادبی کر رہا ہے ماں کے ساتھ، رائٹ، ماں کی جائز باتوں کو بھی نہیں مانتا. یہ تفرید ہے، اعتدال میں تفرید ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل اسی طریقے سے بیوی، اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حقوق بنائے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ بیوی کا حق جو ہے وہ بیوی کو دیتا ہے، لیکن جو ماں کا حق ہے وہ بھی اٹھا کے بیوی کو دیتا ہے، ماں کا حق بھی بیوی کو دیتا ہے. تو یہ کیا ہے، بیوی کے حق میں افراد کر رہا، ٹھیک ہے، بیوی کے حق میں افراد کر رہا ہے. یہ اعتدال کا راستہ نہیں اختیار کر رہا، یہ بیوی کے حق میں افراد کر رہا. اور تفرید کیا ہوگی کہ یہ بیوی کو بیوی کا حق بھی نہیں دے رہا، یہ تفرید ہوگی، ٹھیک ہے. اب ظلم کیا چیز ہوتی ہے، ظلم کیا چیز ہوتی ہے، افراد بھی ظلم ہوتا ہے اور تفرید بھی ظلم ہوتا ہے. افراد بھی ظلم ہوتا ہے، تفرید بھی ظلم ہوتا ہے، دونوں ظلم ہوتا ہے، دونوں ظلم ہوتا ہے. ہمارے ایک تو ہم ظلم کو سمجھتے ہی نہیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے، لیکن جو تھوڑا سا سمجھ بھی لیتے ہیں نا وہ بھی سمجھتے ہیں صرف تفرید ظلم ہوتا ہے، افراد ظلم نہیں ہوتا. نہیں، افراد بھی ظلم ہوتا ہے. بڑھا دینا، بڑھا کے کسی دوسرے کا حق اٹھا کے اس کو دینا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور تفریط یعنی اس کو اس کا حق نہ دینا، وہ بھی ظلم ہوتا ہے. تو یہ ہے. اب اس میں پھر صرف ماں اور بیوی والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ یہی والا اصول چلتا ہے نا. تو رسول کے ساتھ بھی یہی والا اصول چلتا ہے کہ رسول کا جو اللہ نے حق بنایا ہے، جو حقیقت میں اس کا حق ہے، اس سے بڑھا کے اس کو حق دینا. کیا مطلب؟ اللہ کا حق، جو اللہ کا حق تھا وہ اللہ کو دینے کے بجائے رسول کو دینا شروع کر دیا، تو یہ رسول کے حقوق میں افراط ہو جائے، یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے. کہ رسول کو عالم الغیب بنا دینا، ٹھیک ہے، یا رسول کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دینا، یا رسول کو جو ہے وہ کوئی اور اللہ کی صفات اس کے ساتھ لگا دینا، یہ رسول کے حق میں افراط ہے اور یہ ظلم. اور رسول کے حق میں تفرید کیا ہے کہ رسول کا جو مقام تھا کہ بھئی رسول معلم ہیں، رسول کی بات یعنی علم جو ہے، کامیابی کا علم وہ رسول سے حاصل کرنا، وہ رسول سے حاصل کرنے کی بجائے جو ہے وہ آپ برٹش امپائر سے حاصل کر رہے ہیں، یا امریکہ سے حاصل کر رہے ہیں، یا چائنا سے حاصل کر رہے ہیں، یا انڈیا سے حاصل کر رہے ہیں، یا کسی اور سے حاصل کر رہے ہیں، رسول سے حاصل نہیں کر رہے. یہ رسول کے حق میں تفریط ہے. اسی طرح رسول کا ایک اور حق کیا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، رائٹ، ساری مخلوق سے زیادہ عظیم جو ہے وہ رسول کو مانے، مخلوق میں سب سے زیادہ عظیم رسول کو مانے. सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूल से करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट, मखलूक में। खालिक मोहब्बत तो उससे ज्यादा होती है, लेकिन मखलूक में सबसे ज्यादा रसूल। लेकिन हम रसूल से मोहब्बत नहीं करते, हम जो है वो काफिरों से मोहब्बत करते हैं, हम जो है वो रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं, हम रसूल के खिलाफ बात करने वालों से मोहब्बत करते हैं, हम रसूल की सुन्नतों को छोड़ने वालों से जो है मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब है हम रसूल से मोहब्बत नहीं करते, रसूल का हक हमने अदा नहीं किया, राइट। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सेंसिटिव होना, ठीक है ना। आज जो है वो कुछ लोगों के सामने शेयर भी किया, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी, ब्लास्फेमी जिसको कहते हैं, ठीक है, ब्लास्फेमी को जो है वो कोई बहुत ही हल्की सी चीज समझना, ठीक है, ये रसूल के हक में तफरीद, ठीक है। अल्लाह के हक में भी इफरात और तफरीद होती है, बल्कि अल्लाह के हक में इफरात का तो हाँ वो भी एक तरह से समझाया जा सकता है, अल्लाह के हक में तफरीद की, भाई जो अल्लाह का हक है वो आपने उठा के किसी और को दे दिया तो ये अल्लाह के हक में तफरीद हो गई, ठीक है। बाकी सारे हुकूक जाहिर जाहिर जा करके जो कंबाइन होते हैं या जो सारे के सारे बिल आखिर पहुंचते हैं वो तो सारे अल्लाह को ही पहुंचते हैं, तो अल्लाह के हक में इफराद जो है वो इतना आसान नहीं है समझ। ये है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है कि भाई तुम उसको उससे मेरे बारे में इल्म हासिल करो, तो हम कहते हैं कि नहीं मैं तो उससे इल्म नहीं हासिल करूंगा, मैं तो जो है वो अल्लाह से डायरेक्टली इल्म हासिल करूंगा, तो ये अल्लाह के हक में इफराद तो नहीं कहलाएगा, अल्लाह के हक में तफरीद ही कहलाएगा, क्योंकि अल्लाह की बात आपने मानी नहीं, तो अल्लाह के हक में तफरीद ही। खैर ये इस बहस को फिलोसॉफिकल हो जाएगी इसको प्लान, ठीक है। तो माफ कीजिएगा आज हमने 16 मिनट तो क्लास के टाइम से आपसे ज्यादा ले लिए, लेकिन उम्मीद है कि इससे जो है वो आपको फायदा, ठीक है। और ये रोजमर्रा की बात है, ये कोई आपका अफलातून बनाना और आपको कोई पता नहीं मुफस्सिर कुरान बना देना ये मकसद नहीं था, बल्कि ये तो डेली रोजमर्रा की बात है भाई, हुकूक को समझें, और हुकूक में इफरात करना और तफरीद करना, किसी दूसरे का हक हाँ उठा करके दिए चले जा रहे हैं, मुझे बड़ी मोहब्बत हो गई है इनके साथ। अब कैसे मोहब्बत का इजहार कैसे करना है, वो जी दूसरों का हक भी उठा करके उनको देना शुरू कर दिया, बड़ी मोहब्बत हो गई जी इनकी, तो भाई जुल्म है ये मोहब्बत नहीं है, ये जुल्म है, ठीक है। ऐसा हम ना करें वरना जुल्म का बदला जो है फिर पिटाई होता है, क्योंकि जुल्म गुनाह है और गुनाह के ऊपर फिर पिटाई होती है, उस पिटाई से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारे बचने में मदद फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।